जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. तो आफिया का की डिमांड जो थी यार, शी हैज द राइट टू नो कि उनके बच्चे को कत्ल किया गया है या वो जिंदा है. अभी अक्सर लोग सोशल मीडिया पे आके इंडिया पाकिस्तान की कंपैरिजन करते हैं कि इंडिया कहाँ पहुंच गई, एप्पल आ गया, फना वो आ गया, ये हो गया, ये बन रहा है, हम तो पीछे रह गए. बात यहाँ पे हो रही है यार, इस मुल्क ने 2001 से वॉर ऑन टेरर का साथ दिया है.
ये कौन सा केस है जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और उसके बाद चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है. आप किसी और मुल्क के शहरी के बारे में, जो कि वाकया हुआ अफगानिस्तान के अंदर, बकौल आपके शहरी जो है वो पाकिस्तानी है, आप उसका जो ट्रायल है, हाउ आर यू रनिंग दैट ट्रायल एक थर्ड कंट्री के अंदर, अमेरिका के अंदर.
मतलब यही होता है कि कुछ कुछ अरसे बाद जब वो डेट, एक खास डेट आती है जब इनको उठाया गया था, इस तरह से अबडक्ट किया गया था, तो वही एक रैली निकलती है, प्रोटेस्ट होता है, सब होता है. तो अभी भी ऐसा ही हो रहा है और फिर शायद कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे सारे.
वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट. और आज जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी सीरियस टॉपिक है, और इसके ऊपर बात करने का रीज़न ये है कि देखिए, पीपल हु हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फॉलोअर्स, और हमारा जो काम है, हम सोशल कंसर्न्स के ऊपर बात करने के लिए कोशिश करते हैं कि जो भी ऐसा इशू हो, जो प्रेसिंग कंसर्न हो, हम उसके ऊपर बात करते हैं. इसीलिए आज हमने जो टॉपिक चुना है उसके ऊपर एटलीस्ट हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कम से कम आवाम के सामने अवेयरनेस क्रिएट करें और इस इशू को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसको हाईलाइट करें, ताकि जो हमारे लिसनर्स हैं उनको कम से कम इस इशू की सीरियसनेस के बारे में पता चले. और एक जो जुल्म का एक कहते हैं ना कि एक इंतहा होती है कि इंसान यू नो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो वो वाली एक सिचुएशन होती है. एंड वी टॉकिंग अबाउट सिस्टर डॉक्टर आफिया, एंड अनफॉर्चुनेटली इसको बहुत प्रोलॉन्ग कर दिया गया. इट्स बीन लाइक अराउंड 20 years. अराउंड 20 years, एंड इट्स रियली सैड. अभी जो सेनेटर मुश्ताक साहब भी मिलकर आए हैं, उन्होंने जिस तरह से अपडेट दी है, इट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग. एंड चाहे वो कोई भी हो, आई थिंक अगर हमारा पाकिस्तानी शहरी है, आई थिंक वी होल्ड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर बैक स्टोरी इज़, हम ये हमेशा ये बात बोलते हैं, देखिए अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस है, कोई केस है, तो देन देयर हैज़ टू बी यू नो अ डिटर्मिंड रूलिंग रिगार्डिंग इट, कि यार देखो ये गुनाह है, ये प्रूव हो गया है, इस तरह से किया जाए, रादर देन के अनफॉर्चुनेटली उनको रातों रात डिसअपियर कर दिया जाए, दैन उनको ढूंढने के बाद बुलाया जाए, और उनको एक्चुअली जब पता चला कि वहाँ पर हैं, उनका 6 महीने का बेटा भी है, जो आई थिंक उनको अभी तक शायद उनसे पता नहीं है बेटा किधर है,
सबसे छोटे ले बेटे को भी पता नहीं है
अभी तक, पता नहीं है, बिकॉज जिस वक्त उठाया गया था बच्चे को भी पता नहीं कहाँ गायब किया था, रिपोर्टेडली शायद अल्लाह आलम के जिंदा भी है या नहीं. तो आई थिंक इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग. अभी जब सेनेटर मुश्ताक साहब मिलकर आए, तो उन्होंने, क्योंकि बाकी गवर्नमेंट्स ने जो बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने जो कही थी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, चाहे वो पीडीएम हो, चाहे इमरान खान साहब हो, चाहे कोई भी हो, किसी ने भी इस बात के ऊपर एम्फसाइज करने से बल्कि एम्फसाइज करने से हेजिटेट किया है. तो आई थिंक इसको, इस इशू को जब सामने आया है, अभी सेनेटर मुश्ताक साहब आए हैं, चूँकि मैं अपने ऑडियंस को बताता चलूँ, तो उन्होंने देखा कि सामने के दांत टूटे हुए थे, सर पर चोट भी थी, एंड अनफॉर्चुनेट इनको ये भी नहीं पता था, डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा मिली तो उनकी मदर की डेथ हो गई थी, तो शी वॉज़ नॉट अवेयर ऑफ इट, एंड किस तरह से उनके साथ जेल में जो मामलात हुए. तो आई थिंक ऑडियंस सामने एक पर्सपेक्टिव ये रखना कि देखिए, हमारे पास हमारे अपने मुल्क के लोगों के जो शहरी है, उनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, और जान की कोई वैल्यू नहीं है. और हमें पता है कुछ पिछली गवर्नमेंट्स में जिस तरह से लोग जो है वो उठा लिए गए थे फॉर अ लॉट ऑफ केसेस, एंड आई एम नॉट सेइंग कि सारे ही शायद इनोसेंट हों, बट ये कि बहुत सारे लोगों को कर दिया था. इनफैक्ट किताब में भी लिखा गया था कि जना कि फला फला अमाउंट के ऊपर वो किया गया है. आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी विच नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि आई थिंक वी नीड टू गिव वैल्यू टू आवर ओन पीपल. एंड अगर पाकिस्तान से रिलेटेड मामला है, तो पाकिस्तान की जो भी जस्टिस सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए किया जाए. मैं हैदर आपसे बोलूँगा, थोड़ा सा बैक स्टोरी ज़रा केस के बारे में अगर आप हाईलाइट करें विद रिगार्ड्स टू व्हाट दिस अबाउट, ताकि हमारी ऑडियंस को थोड़ा पता चले कि यार व्हाट इज़ दिस आइडिया, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल जो लिबरल माइंडसेट के भी हैं, या जो जिनको नहीं पता, वो बोलते हैं यार टेररिस्ट का लेबल लगाते हैं, या एक्विजिशंस करते हैं, या सपोर्ट करते हैं इस बात को कि जना कि नहीं सही हुआ और वो जुल्म होना चाहिए, वेर एज़ वहाँ पर ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ बड़ी एक्टिव हो जाती हैं। तो मैं यहाँ तक जानता हूँ कि यार देखिए खाली इस वाला किसने एक पुराना केस के बारे में बात होता हूँ, पाकिस्तानी छोड़ के एक US हिटमैन यहाँ पे पकड़ा गया था, जेल में था, प्रूवन था, आवाम ने पकड़ लिया था, कोर्ट ने पकड़ लिया था, बस रातों रात उसको फ्लाई आउट करा के ले गई थी US गवर्नमेंट। जहाँ पर हमारे अपने लोगों की बात होती है, हम शायद अपने लोगों के लिए ख़ुद आवाज़ नहीं उठाते, हम उनके राइट्स के लिए ख़ुद वो नहीं करते। हम ये नहीं कह रहे कि आप गवर्नमेंट से लड़ना शुरू कर दें या अथॉरिटीज़ को वो बना स्टेट विद इन स्टेट बना दें, हम कहते हैं यार एक तमीज़ के दायरे में एक एम्फेसाइज डालना, जो कि हम अभी तक इसकी इनकी फैमिली जो है वो काफ़ी करती आ रही है। आई वुड लाइक यू टू बी एबल टू पुट सम लाइट ऑन द बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ दिस होल इशू।
अजी वी वोंट लाइक टू डेवलप टू मच डीप इन टू द सब्जेक्ट पर्टिकुलर केस के बारे में थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा बता दें क्योंकि आजकल ज़रा हॉट है, सब लोग सुन रहे हैं आफिया सिद्दीकी केस, लोग बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि एक्चुअल में बात हुई क्या। एंड ट्रूथ बी टोल्ड बहुत सारे लोगों को क्या मैक्सिमम लोगों को इवन जर्नलिस्ट को भी और जो स्टोरीज पब्लिश भी हो रही हैं उसके भी मुख्तलिफ वेरिएशन हैं। मतलब वो हमें बात मालूम है कि इस ये जो 20 साल का अरसा गुजरा है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कौन थी? वो बेसिकली एक डॉक्टर थी बेसिकली, और PhD स्कॉलर, और बाहर से पढ़ के आई थी, उनका बचपन भी जाम्बिया में गुजरा और यहाँ पे आई, और बहुत 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 काबिल PhD स्कॉलर थी। उन्होंने उनको जो है ना वो उनको एक केस के अंदर फंसाया गया, ठीक है, अब फंसाया गया नहीं फंसाया गया लेट्स नॉट गेट इन टू दैट, लेकिन इस 20 साल के अरसे के अंदर आप समझें कि 5 साल तो वो लापता रही हैं, ठीक है, इट इज़ अनअकाउंटेड फॉर दैट टाइम, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो किसी जेल में रही हैं, कहाँ पे रही हैं, किसी वेयर हाउस सेफ हाउस में रही हैं, अल्लाह आलम, हमें नहीं मालूम उस बारे में उस वक्त क्या हुआ। अब अपने बच्चों समेत ये बीच में गड़बड़ आई है उनकी, बीच में बच्चों को भी उनके साथ लेके चले गए थे। उसके बाद उस टाइम पीरियड के बाद इनको जो है ना वो अफगानिस्तान के अंदर इनके बारे में इनको नमूदार हुई है कि वहाँ पे एक जेल के अंदर, ठीक है, वहाँ पे एक जेल के अंदर हैं, और उसके बाद इनको जो है ना वो एक अब एक अफगान वेरिएशन ऑफ द स्टोरी और एक जगह अमेरिकन वेरिएशन स्टोरी, दोनों में थोड़ा फ़र्क है। दोनों में फ़र्क ये है कि जो अमेरिकन हैं वो बेसिकली ये कहते हैं, जो स्टोरी थी वो बेसिकली स्टोरी ये थी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जगह पर लेके जाया जा रहा था और इन्होंने जो है वो हमला किया हमारे एक गार्ड के ऊपर, एक फौजी के ऊपर, और उससे जो है ना बंदूक छीनने की कोशिश की और उसके बाद उसको मर्डर करने की कोशिश की उस बंदूक के साथ, जो वो कोशिश जो है वो नाकाम बना दी गई, और क्योंकि वो हमारा फौजी था इसलिए उनका जो ट्रायल है वो भी हमारे कोर्ट्स के अंदर होगा अकॉर्डिंग टू देम, ये उनका आर्ग्यूमेंट था। खैर, और जो दूसरी साइड की स्टोरी है जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की फैमिली की तरफ से आती है और इवन जो अफगान साइड की स्टोरी है वो ये है कि इट वॉज़ नॉट लाइक दिस, क्यों? क्योंकि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इस सिचुएशन के अंदर थी नहीं कि ऑब्वियसली वो उनका क्या वेट होगा, मतलब 50-60 के जी की खातून जो है वो एक छः फुट के इतने बड़े सोल्जर से जो है ना, जो ट्रेंड सोल्जर है उससे एक बंदूक उठाएंगे जिस बंदूक का वेट ही खाली 10-12 kg है, तो इट डजेंट साउंड, इट डजेंट मेक सेंस। एक राइफल है पूरी की पूरी और वो खींचने, और उनके बारे में जो हालात जो वहाँ पे अफगानी बताते हैं जो लोग खुद वो कहते हैं, उनके हालात ये थे कि वो तो बेहोश हो रही थी, शी वॉज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, तो वो उनके बारे में बताया गया था, जो अथॉरिटीज़ ने उनको बताया था कि ये बहुत डेंजरस क्रिमिनल आ रहा है और शूट एट साइट वाला मामला आपने इनके साथ करना है, और लेकिन जब उन्होंने देखा उनको जो वहाँ पे अथॉरिटीज थी वो तो हैरान परेशान रह गए थे, यार ये कैसे खतरनाक खातून हो सकती हैं, ये तो मतलब शी इज़ बेयरली कैरिंग हरसेल्फ, वो कैसे खतरनाक खातून हो सकती हैं। और ये केस उनका बनाया बेसिकली, और उसके बाद वो केस चलता गया, उसके बाद कोर्ट की मुख्तलिफ हेयरिंग्स हुई, उसके बाद उनकी अपीलों को रद्द किया गया, वहाँ पर मुख्तलिफ वकला को किया गया, और इस टाइम पीरियड के अंदर उनको गुआंटानामो बे के अंदर भी रखा गया। उसके बाद 15 साल हो गए अभी, यानी कि ये 2003 मार्च के अंदर सबसे पहली मरतबा जो है ना शी वेंट मिसिंग, और उसके बाद अभी मार्च 2023 भी गुजर के उसके आगे भी, मतलब 20 साल प्लस हो चुका है इस सारे के सारे मामले को। पॉइंट बीइंग कि वट एवर द केस वॉज अगर उम्र कैद भी किसी इंसान को होती है तो वो आपको पता है कैद बामशक्कत, और उसके बाद सुबह शाम मिला के वो 14 साल की होती है, 14 साल की वो कैद होती है, उसके बाद बंदा आज़ाद कर दिया जाता है। ठीक है, आप ये देखें 14 साल दूर की बात है, उनकी आप पूरी की पूरी ज़िंदगी लगा दी है, वो 20 साल वहाँ पे हो गए, या तो अगर वो कन्विक्टेड है उनको सज़ा सुनाएं और उनको उनको उनका एक एक साइड पे कर दें, उनको उम्र कैद दी थी तो 14 साल के बाद आप उनको बाहर निकाल दें, या तो फिर उनको आप छोड़ दें इफ़ शी इज़ इनोसेंट। तो ये कौन सा केस है जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और उसके बाद चला जा रहा है। और सबसे मज़े की बात, आप किसी और मुल्क के शहरी के बारे में जो कि वाकया हुआ अफगानिस्तान के अंदर, बकौल आपके शहरी जो है वो पाकिस्तानी है, आप उसका जो ट्रायल है, हाउ आर यू रनिंग दैट ट्रायल एक थर्ड कंट्री के अंदर, अमेरिका के अंदर? हालांकि हमें पता है कि हम यहाँ से एक थाने का जो केस होता है ना वो दूसरे थाने के साथ वो कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ, हम इसको डील नहीं करेंगे। तो यहाँ से आप एक और मुल्क का बंदा, एक और मुल्क का केस उठा के एक तीसरी जगह पे जो है ना वो चला रहे हो वहाँ पे, एंड नो वन इज़ देयर जो इसको डील करे ना इसके बारे में कोई बात करे। जैसे आपने कहा कि हुकूमतें कितनी गई, 20 साल हो गए, इसके बीच में 1, 2, 3, 4 हुकूमतें आगे जा चुकी हैं। उन चारों हुकूमतों से, ये मुख्तलिफ पार्टी की हुकूमतें बाय द वे, अगर किसी को ये लगे हम किसी एक पार्टी के बारे में बात करें, उन चारों में से किसी ने, सब ने नारे लगाए, सब ने कहा आफिया सिद्दीकी हमारी बेटी है वो फलां टिमकान, लेकिन ऑन ग्राउंड एफर्ट्स की अगर बात की जाए, एफर्ट्स जो है वो किसी ने भी नहीं किया। बारिंग में भी जमात इस्लामी है कदों का और जो लोग हैं जिन्होंने पर्सनल कैपेसिटी के अंदर कुछ किया तो किया, वरना किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। दिस गोज टू शो कि वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट
इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट के काफ़ी एविडेंसेस मिले हैं कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनके साथ आई एम सॉरी टू से दैट रेप का मामला हुआ है, उनके उनके अभी जो मुश्ताक साहब ने देखा है कि उनके सर पे जो चोट लगी हुई थी, और अल्लाह आलम क्योंकि उनको मिलने भी नहीं दिया गया उनकी बहन से, उनको शीशे के दौरान बाकी ना कुछ हाथ मिलाने दिया, एंड यू नो शी उनके सामने के दांत टूटे हुए थे, एंड नॉट श्योर बिकॉज इंसान जो जिस तरह से निकलता है इस पूरे स्टेज पर उनका ज़रा एक जहनी एक यू नो उस पर भी असर पड़ता है, जहन पे मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है। वी नॉट श्योर कि इफ़ शी स्टिल स्टेबल और नॉट, बिकॉज शी वॉज कॉन्स्टेंटली सेइंग कि मुझे इस जहन्नुम से निकालो, अब बात यहाँ पर देखिए मैं सुनी सुनाई बात पर ज़्यादा वो नहीं जाऊँगा जिनको हमारी रिपोर्ट ये होती है कि देखिए इज़ लाइक अगर ये आम आदमी के सामने बात आ रही है तो कि हमारी गवर्नमेंट के सामने बात नहीं आती। और मुश्ताक साहब ने एक बात ये भी कही थी कि जो है कि उसकी जो असल में जो चाबी है उसकी आज़ादी की वो असल में वाशिंगटन में नहीं है, वो हमारी अपनी अथॉरिटीज़ के पास है कि वो अपना वो रखें। मैं एक बात पे हाईलाइट करना चाहूँगा, देखिए हमेशा हमारे पास एक मामला रहा है, हमारे पास चाहे वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहे हों या हमारी जो भी माइंड्स रहे हों, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल रहा है जो उनके लिए थ्रेट रहा है उसका कहीं ना कहीं इस तरह का केस बना या उसको ब्रिंग डाउन कर दिया गया हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे शायद हम खुद ही सपोर्ट करते हैं इस आइडिया को कि शायद हमारे मुल्क अपने पैरों पे खड़ा ना हो, और खड़े होने लगता है तो हम उसी को इंडिविजुअल को गिरा देते हैं। हमारे इंटेलेक्चुअल माइंड्स या तो यहाँ पे रुकते नहीं हैं, या तो जो रुकते हैं उनके साथ हम खुद बुरा सलूक करते हैं, या उनके ऊपर कोई इस तरह का केस बन जाता है। बट रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट आपने बात सही कही कि अगर उनके साथ कोई बात साबित है तो देन वाई इट इज़ नॉट देयर इन द क्रिमिनल कोर्ट, वाई इज़ इट बीइंग डन ऑन अ यू नो गुआंटानामो बे या इस तरह के जो जेल्स में हैं जहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका केस नहीं ट्रायल किया गया, बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं है। सो मेनी पीपल आई नो आई एम नॉट गोना टेक नेम, जो बहुत सारे एक रैपर भी थे मुसलमान हो गए थे उनको लेके चले गए थे, एट द सेम टाइम बाबर अहमद एक इंडिविजुअल थे जिनका भी यूके वगैरह में था, देन दे आर अदर इंडिविजुअल्स जिनको बहुत मोज़म्बिक, दे आर सो मेनी पीपल जिनको बहुत अरसे इस गुआंटानामो बे में रखा फिर आपने छोड़ दिया गया विदाउट एनी वैलिड रीजन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि शायद उनके ऊपर कोई इस तरह की रिपोर्ट थी। देन व्हाट वाज द प्लेस इज लाइक वेयर जहाँ पे रखा जाता है they treat them like worse than animals.
इंसान भी रखना वहाँ पे,
इंसान अपना गुनाह खुद कबूल कर ले just to be able to relieve themselves की जाना कि मेरी जान छुटे।
वो बातें बताने लायक नहीं है जो उनकी बहन बता रही है, वो आपने भी देखी होगी जो उनकी बहन बता रही है वो एक चीज़ है, उसके अलावा जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जो लोग वहाँ से होके आए हैं जो जिनके बारे में जो ग्रे लेडी कहा जाता है उनको, और उसके बाद उनको प्रिजनर से पहले 650 कहा जा रहा था, वो उनकी चीखों के बारे में और उनके साथ जो जो ट्रीटमेंट होती रही, जो लोगों ने अपने जो ऐनी शाहिदीन हैं यानी जो फिजिकल जो लोग फर्स्ट हैंड देखते रहे हैं, वो किस तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट होती रही है, वो चीज़ें यहाँ पे मेंशनेबल नहीं है। जैसे आपने बताया कि वो प्रॉपर जिसको आप असॉल्ट है, वो फिजिकल असॉल्ट भी, वो मेंटल टॉर्चर भी है, और साथ साथ वो सेक्शुअल असॉल्ट भी है। मतलब आप खुद इमेजिन करें कि नॉर्मल खातून के साथ भी, जो पर्दादार नहीं भी है, वो एक पर्दादार खातून है, वो हम सबको पता है मालूम है वो बात, वो हिजाब करने वाली खातून है, उनके साथ अगर वहाँ पे उनको मर्दों के साथ रखा जा रहा है, उनके साथ उनको टॉयलेट यूज़ करने का कहा जा रहा है, और उनके वहाँ पे उनकी जो है ना वो स्ट्रिप सर्चेज की जा रही है, कपड़े उतार के उनके जो है वो सर्च की जा रही है, तो मतलब पीछे क्या रह जाता है? दिस इज अगेन टू रेप।
क्रिमिनल के साथ भी ये मामला नहीं करता। मैं भी आज मैंने कल ही शायद हमारे YC के ग्रुप पे मैंने एक वीडियो शेयर किया जो कि एज अ रिमाइंडर था, जो हमारे पाकिस्तानी जेल का मामला था। यू नो इन इटसेल्फ जो जिस तरह से बता रहे थे, चलो साबित किए हुए लोगों को केस किया, उनको बताया कि देखिए 11 बजे से लेकर 4 बजे से लेकर 11 बजे तक उनको इधर रखा जाता है, इस वाले जेल में रखा जाता है, और इनके लोगों को आके मिलाया जाता है, उनको वसी वसी लिखवाई जाती
खाने
है
पीने का।
वो मामला, उनको खाने पीने में खाली कुछ चीज़ें दी जाती हैं, दूध दही वगैरह, क्योंकि जारी सी बात है जब फांसी दी जाती है तो फिर देन एक प्रॉब्लम होती है, तो उनको ये चीज़ें दी जाती हैं, उनको वसीयत वगैरह लिखवाई जाती है, और फिर तीन लोगों को यहाँ पे खड़ा किया जाता है। देन जब उसने वो चीज़ घड़क खोली ना, जिससे ज़मीन वो नीचे होती है, तो वो भी बोल रहा था कि मैं बताने का मकसद ये कि यार अल्लाह किसी को भी इस मौके पर ना लेकर आए, कि लोगों को यहाँ पे बोल रहे हम आधे घंटे जो 35 मिनट्स 20-25 मिनट इनको लटकने देते हैं, फिर बाद में डॉक्टर आके चेक करता है कि नहीं ये मर गए हैं, तो फिर बाद में इनकी बॉडी को ले जाया जाता है। मीनो दिस इज़ अ लीगल क्रिमिनल कोर्ट की डिसीजन के बेसिस के ऊपर सजाए मौत देने वाली। इमेजिन करें जो टॉर्चर ये CIA एजेंट्स और ये जो गुआंटानामो बे में होते हैं, जो वीडियोस और पिक्चर्स रिलीज हुई थी अमेरिकन सोल्जर्स ने जो प्रिजनर्स के साथ किया था, इलेक्ट्रोक्यूट किया था, किस तरह से उनको टॉर्चर किया था, एंड देयर डिफरेंट मेथड्स की, इवन जब वो रिलीज हुआ था तो CIA के एजेंट्स तक रो पड़े थे कि यार बंदे को मुंह पे कपड़ा डाल के पानी डाला जा रहा है, उसको टॉर्चर किया, इसको सांस नहीं आ रही, एंड यू नो जिस तरह से यू नो व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स यू नो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको वो करेगी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एक फीमेल जो आप जिस कॉम को एग्जांपल के तौर पे देते हो कि जो फेमिनिज्म विमेन राइट्स के ऊपर एक काम कर रही है, उनको लिबरेट करने की कर रही है, आपको फंड कर रही है अबाउट ऑल दीज राइट्स, व्हाट आर दे डूइंग इन देयर ओन कैपेसिटी टू प्रूव देयर ओन पावर।
ये गुआंटानामो बे तो पता है नोटोरियस है, हम सबको पता है वो नोटोरियस है, वो हमें पता है कि जितने भी लोग जिनके बेनामी केसेस हैं, जिनके कोई एक्चुअल केसेस नहीं बनते हैं, उनको उठा के गुआंटानामो बे में भेजा जाता है, और वहाँ पे कोई फिजिकल रिमांड का कोई हिसाब किताब नहीं है कि लिया जाता है नहीं लिया जाता है। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं ना कि उसका फिजिकल रिमांड दे दिया, ये हो गया वो हो गया, कोर्ट के हवाले, कोर्ट ने दिया, कोई ना वारंट्स की जरूरत है आपको, ना वहाँ पे रिमांड की जरूरत है, कुछ भी नहीं है। क्यों आपने अमेरिका से बाहर बनाया, क्यों है, इसलिए बनाया ना ताकि उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन ही उसके ऊपर अप्लाई ना हो वहाँ पे। तो ये सब मामलात करने के, और ये लोग कौन है बैठे हैं, ये लोग वो हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस हैं, ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस हैं, कहते हैं अपने आप को, ठीक है, और यहाँ से रैलीज निकालते हैं एनिमल राइट्स के ऊपर, ठीक है, और उनको हक दिलाने के बाद, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पब्लिक, पब्लिक इज द सेम एवरीवेयर, वो कुछ उनकी बुराई हैं कुछ अच्छाई हैं उनकी ऑब्वियसली, लेकिन जो हुकूमतें वो रूल्स निकालती हैं एनिमल्स के बारे में कि जी इनको इस तरह कत्ल नहीं करना, मुसलमानों की तरह नहीं करना, ये बारबेरियनिज्म है, इनको ये करना है, इनको शौक करना है, उन लोगों के ह्यूमन राइट्स के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ चले जाते हैं, इंसानियत कहाँ चली जाती है, और मज़े की बात यह है कि वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और मज़े की बात यह है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इज़ नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट, ये केस जो है ये थ्रू आउट द वर्ल्ड इन्होंने बेशुमार लोगों के साथ किया, इन्होंने लीडर्स को नहीं छोड़ा, इन्होंने बड़े बड़े लीडर्स, आई एम नॉट टेकिंग नेम्स हियर, वो चीज़ पर उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, पोलिटिसाइज होती है बात सारी की सारी, लेकिन बड़े बड़े लीडर्स को नहीं छोड़ा उन्होंने, अपने मुल्कों के अंदर उनकी चलती हुई हुकूमतें गिरा के उनका बेड़ा गर्क किया, इन लोगों ने
दावे किए इनके पास ये चीज़ें, कुछ भी नहीं मिला,
कुछ भी नहीं मिला,
कुछ भी नहीं मिला, और आज उन्हीं लीडर्स के मुँह से स्लिप इन होता है स्पीच देते हुए, एंड देन दे यू नो ऐसा नॉर्मल सा रिएक्शन देके उसको कर देते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट बुश व्हेन ही वाज गिविंग अ स्पीच,
एग्जैक्टली
व्हाट डिड ही से, व्हाट डिड ही एग्जैक्ट वर्ड्स लाइक कि
गलती से बोल गया था, उसके बाद
गलती से सच निकल गया उसके मुंह से, एंड ही वाज लाइक यू नो ठीक है। सो
अपने वेटरन्स, इनके अपने वेटरन्स जो हैं, दे सेड इट आउट लाउड मल्टीपल टाइम्स कि यू आर यूजिंग अस एंड यू आर अब्यूजिंग पीपल थ्रू अस,
एंड दे एग्जैक्टली सेड के I thought we were fighting against oppression.
Exactly.
कि हम जुल्म के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन we were the oppressors. Because यार आप अगर videos देखिए, because there was a time when मुझे ये documentaries, I'm talking about 2004, 2005, मुझे ये चीज़ें मिली 9/11 के बाद, इस तरह का मामला जो जो आर्मी ऑफिसर्स के जो कन्फेशंस थे ना, कि किस तरह से 12-13 साल की लड़कियों का रेप करके उसको जला देते थे मस्जिदों के ऊपर, उन्होंने किस तरह से वो किया। ये मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, ये नहीं कर पाती काफिर कौम जब तक अपने लोगों के बीच में जो है ना धोखेबाज ना बैठे हों। और उन्होंने अफगानिस्तान का भी ये बात बोली, उन्होंने इराक़ की बात भी ये बात बोली कि देखिए हमें चाहती तो इनके पास इतनी मिलिट्री इक्विपमेंट्स थी कि हमें फ़ाइट कर सकते थे, बट वी हैड एन ओपन गेट
obviously
because people as if they did not want to fight us,
it's always an inside job. लेकिन सबसे पहली बात, हमें ये बात तो अच्छी तरीके से मालूम है, ये बात अच्छी तरीके से हमें मालूम है कि ये जितने भी लीडर्स हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ये जो अच्छा वक्त है हमारा, इसके बाद क्या बुरा वक्त भी आएगा हमारे ऊपर, तो अल्लाह के नबी ने बयान किया जी बुरा वक्त भी आएगा, फिर पूछा गया फिर दोबारा अच्छा वक्त भी आएगा, जी हाँ उसके बाद दोबारा अच्छा वक्त भी आएगा हमारे ऊपर, वह पूछा गया क्या उसके बाद दोबारा बुरा वक्त भी आएगा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ उसके बाद बुरा वक्त भी आएगा। और ये जो बुरा वक्त आएगा, इस बुरे वक्त के अंदर जो है ये जो लीडर्स होंगे आपके, ये लीडर्स वो लोग होंगे जो मेरे तरीके के ऊपर नहीं चलेंगे, ये हिदायत के रास्ते पे नहीं चलेंगे, मेरे तरीके पे नहीं चलेंगे, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि ये ऐसे लोग हैं जो इंसानों के जिस्म के अंदर जो है ना, ये शयातीन के दिल इनके, ये ऐसे लोग हैं। तो ये टाइम हमारे ऊपर आना था, बेशक इसके अंदर कोई सच शक व शुबे की बात नहीं है। और ये क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो ये वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन राइट नाउ, क्योंकि हमने कहा इतनी हुकूमतों की बात है, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड की बात है, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, ये सारी दुनिया के अंदर ये वाले मामलात हैं। और हम ये समझते हैं असल में पाकिस्तान में बैठ के जो पाकिस्तानी है अनफॉर्चुनेटली उनको ये लगता है द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ये जो पॉलिटिक्स हैं ये मामलात सारी दुनिया के अंदर इसी तरीके से चलते हैं टू डिफरेंट एक्सटेंट्स, और बहुत सारी डिफरेंट बड़ी बड़ी गेमें खेली जा रही होती हैं एंड द पब्लिक डजंट इवन नो व्हाट दे डोंट नो, ये बहुत बड़ा मसला है। और मजे की बात है ऐसा, अब
दैट्स द मीडिया पावर, बिकॉज़ हमारे इग्नोरेंट मैसेस को परसेप्शन डेवलप कराने के लिए दीज आर द प्लेटफॉर्म्स जो बात की जाए इसलिए। लेकिन बात ये कि देखिए इन बता शरब बेकल शदीद, अल्लाह सुब्हान तआला की जो पकड़ है ना वो बहुत शदीद है। आप देखिए दिस इज वाई कहते हैं ना वो क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत को किस लिए आना है, नाइंसाफ़ी जुल्म लोगों के साथ, एंड यू नो देयर नंबर ऑफ केसेस। बात यहाँ पे हो रही है देखिए, अगर हम कोई कोर्ट नहीं है, हम कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज नहीं है कि हम यहाँ पे आपके सामने बैठे ये बोले, बिकॉज हमारा पॉडकास्ट पे रूलिंग और किसी के बारे में वर्डिक्ट देना मकसद
हम
नहीं
जो हो चुका
हम ये बात कर रहे हैं कि देखिए द एंड ऑफ द डे इंसानियत के तौर पर हमारा दीन ये हमें सिखाता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा करते हुए ऐसे इशूज़ के ऊपर बात करें जिसकी वजह से लोग कम अज़ कम उसके बारे में आगाह हों कि देखिए ये हमारे इशूज़ है, क्योंकि हमारे पास पता है इशूज़ का करना शुरू कर दिया हमारे, हमें वो कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ कि हमारे पास जो है ना दो मर्द प्यार कर रहे हों, दो औरतें प्यार कर रही हों, जानवर के राइट्स, ये सब चीज़ों के ऊपर लगाया हुआ कि हमारी ऑडियंस डिस्ट्रैक्टेड रहे, हमारी ऑडियंस जो है वो ऐसे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर बहस मुबासा देखते रहे जिससे उनकी ज़िंदगी में उनकी मुल्क की हालात में बेहतरी आने के लिए कोई फ़र्क ना पड़े, लोग टीवी के सामने बैठे रहें, गेम शोज़ देखते रहें। लेकिन जो रियल प्रेसिंग इशूज़ हैं जिससे इंसानियत पता चलती है, जिससे इंसान के हालात बदलते हैं, जिससे आपकी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, वो आपको नहीं पता होंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे डोंट वांट यू टू ब्रिंग दैट चेंज, दे वांट टू कंट्रोल यू थ्रू फियर।
हमें थ्रू आउट देख रहे हैं हमारे अंदर ये चीज इतनी डीप रूटेड है, हमारे अंदर तक ऐसे बैठी हुई है कि हम जो सब्जेक्ट्स वाकई डिस्कस करने वाले हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करते ही नहीं। मिसाल के तौर पे
करना भी
चाहते रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ सब भाइयों को, अक्सर जब डिस्कशन हो रही थी मेरी, मैं कहता हूँ कि इन सब्जेक्ट्स के बारे में एक सिविलाइज्ड डिस्कोर्स ना होने की वजह से, तमीज़ से बात करने के अंदाज़ और एक अदम बर्दाश्त की वजह से हमारा मसला ये हुआ है कि वी हैव ग्रोन टू बिकम इग्नोरेंट, और हम उस मामले के अंदर जाहिल हो चुके हैं। आप रिलीजन भी उठा के देख लें, आप पॉलिटिकली भी देख लें, हम उस इन मामलात के अंदर हम जोहला हैं बिल्कुल, वी डोंट नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हमें नहीं पता, हम बिल्कुल इफरात व तफरीत यानी एक्सट्रीम्स के ऊपर चले जाते हैं। अगर हम रिलीजन की बात भी करते हैं तो हम रिलीजन के अंदर भी या मारने धाड़ने को दौड़ देते हैं, ठीक है, या जलाओ घेराओ बाहर निकल जाओ और सब कुछ काट पीट कर दो, या फिर हम कहते हैं सब कुछ बर्दाश्त कर लो, सब कुछ ओके ओके।
बिकॉज व्हेन यू आर इग्नोरेंट ना हैदर, जब आप इग्नोरेंट होते हो ना तो फिर आपके लिए कन्वीनियंट वे आउट ये होता है कि आप जो ओपीएम जो मासेस का है ना उसको आप
कंज्यूम करते रहो,
एक्सेप्ट कर लो, बिकॉज आपने अपनी इग्नोरेंस को हाइड करने के लिए जो सोशल में जो लोगों का व्यू होता है उसको एक्सेप्ट कर लिया होता है अपने आप को एक्सेप्ट कराने के लिए, या आप कन्वीनियंस में अपनी इग्नोरेंस में अपोज करने के लिए यूनिक बनने के लिए वो लेते हो ओपिनियन उठा लेते हो। तो वी वांट आर मासेस टू बी यू नो प्रॉपरली फ्रेम्ड रिगार्डिंग द माइंडसेट, आप इश्यूज को डिस्कस करें हैविंग अ प्रॉपर डिस्कोर्स, बट और इश्यूज जो आप अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप कोई पॉडकास्ट कराते हैं आप इसके ऊपर बात करें डिस्कोर्स करें, पर्सनैलिटीज़ को बुलाएं, इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि रेलिवेंट पर्सनैलिटीज़ को बुला के बात करें। हसन मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि एज एन इंडिविजुअल कितनी अवेयरनेस आपको मिली है सोशल मीडिया से इस इशू के बारे में कि आप यू नो एज इंडिविजुअल्स, आई नो यू, आई नो हैदर, आई नो माई सेल्फ एंड अदर टीम मेम्बर्स, कि हम कोशिश करते हैं कि यार उस इशू पे बात करें जो वाकई मतलब एक प्रेसिंग कंसर्न हो, लेकिन कई दफ़ा हमारे कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिनके बारे में हमें ब्लैक एंड वाइट में पता नहीं होता या हमें सही तरह से उसकी ट्रांसपेरेंसी पता नहीं होती, तो ऑफकोर्स उसकी वजह से हम इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ना शो करते हुए बात नहीं करते। बट ये कि आपका कितना इंटरेक्शन हुआ, आपको कितना इसके बारे में अहमियत महसूस हुई बात करने के बारे में एज अ स्टूडेंट, या आपकी फ्रेंड सर्कल में क्या इस बारे में कभी डिस्कशन हुई, या आपको किस तरह की डिस्कशंस अपने यंग सर्कल में नज़र आती है?
जी भाई, बात तो मतलब काफ़ी कंसर्निंग है इस लिहाज से, क्योंकि जिस तरह हमारी नॉर्मल डिस्कशन होती है दोस्तों में बैठते हैं तो यूजुअली एक फ्रेंडली वाइब होती है, हंसी मज़ाक चल रहा होता है, लेकिन वही बात है कि मीडिया मैनिपुलेशन की जो बात है, मतलब मैं अगर इफ़ आई ओपन यूट्यूब मैं सर्च करूँ देन आई विल फाइंड कॉन्टेंट, लेकिन जिस तरह वही बात है ना कि मीडिया उनके हाथ में मतलब वेस्ट के हाथ में है जो भी इसके मैनिपुलेशन का काम कर रहे हैं, सो इस तरह की उनका एल्गोरिदम इस तरह का काम करता है कि इट वोंट यानी सेंड यू वीडियो आफ्टर वीडियो, मतलब इस तरह से नहीं होगा, यू हैव टू गो एंड सर्च। तो इसको काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ मिनिमाइज़ किया जाता है, क्योंकि जिस तरह नॉर्मल आप सर्फ कर रहे हो आपको जिस तरह से इस तरह का कॉन्टेंट नहीं मिलेगा, लेकिन कॉन्टेंट है भी, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, जिस तरह मैं भी देख रहा था कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह तो उसमें कॉन्टेंट वगैरह है, लेकिन अगेन वही बात है कि आप एक एज एन इंडिविजुअल या एज ए यूथ नौजवान होने के नाते आपके अंदर वो कंसर्न तभी आएगा जब आपको उसके बारे में अहमियत पता होगी, उसके बारे में बताया
ऐसे
जाएगा कि क्या हो रहा है और कितनी, मतलब वही बात है ना, एक्सपोजर होगा तो आपको उसके बारे में अहमियत का अंदाज़ा होगा, अदरवाइज़ आपको पता शायद वो याद भी ना हो, मतलब यही होता है कि कुछ कुछ अरसे बाद जब वो डेट एक ख़ास डेट आती है जब इनको उठाया गया था इस तरह से अबडक्ट किया गया था, तो वही एक रैली निकलती है, प्रोटेस्ट होता है, सब होता है,
अभी भी इसी बात हो रही है।
हाँ तो अभी भी ऐसे ही हो रहा है और फिर शायद कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे सारे।
अनफॉर्चुनेटली बहुत से लीडर्स ने जब डॉक्टर आफिया की वालदा जिंदा थी, उनको बड़ा तसल्ली थी
उनके
कि
पास
हम
गए
गवर्नमेंट में आएंगे तो हम बात करेंगे इस बारे में। और जैसे डॉक्टर फौजिया ने कहा कि कुछ लोगों से हमारी शिकायत है कि सबसे ज़्यादा उम्मीद उनसे थी, बिकॉज़ उन्होंने सबसे ज़्यादा तसल्ली दी थी, और आज तो मेरी
सही बात
वालदा ज़िंदा नहीं है और इसी दुख के साथ दुनिया से चले गई कि उनको तसल्ली दी गई। और जब मौका मिला इस बारे में बात करने के लिए तो बहुत से लोग पिछड़ गए। एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि शायद उस वक्त कुछ ऐसे इश्यूज़ हों बिगर स्केल के ऊपर, उस पर बात करने की ज़रूरत हो, बट एट द एंटायर जो आपका टर्म है, आपने उसमें कितनी एफर्ट लगाई व्हेन यू कम इन पावर, एंड दैट दिस एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू पॉइंट टुवर्ड्स दिस लीडर्स, कि शायद इलेक्ट होने से पहले हम बहुत से ऐसे कंसर्न्स के ऊपर तसल्ली देते हैं कि हम इनके ऊपर इश्यूज़ रेज करेंगे, बट व्हेन यू बिकम कम इन पावर यू डू नॉट रेज इश्यूज़ और डू एनीथिंग रिगार्डिंग इट। आई नो फॉर अ फैक्ट मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो आज पॉलिटिकल पोजीशंस पे हैं, और इवन उन्होंने जब यहाँ पर हम डिफेंस में उनकी इनविटेशन के ऊपर गए कि उन्होंने बताया ठीक है हम बात कर रहे हैं कि हम आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप हमारे साथ सपोर्ट करें और हमें हमारी सोशल मीडिया कैंपेन का हिस्सा बने, तो उन्होंने फिल्ट्रेशन प्लांट वगैरह के बारे में काफ़ी एम्फेसाइज़ किया और हमारा अपना एक मिशन बनाया कि अगर आप मुझे इलेक्ट कर लेते तो मैं डिफेंस के इन पानी के प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। वो आज से सबसे बड़े ओहदे पे हैं, उनसे उससे बड़ा कोई ओहदा नहीं है शायद, यू नो ऑन अ इलेक्टोरल बेसिस, लेकिन ये कि एज फार एज आई नो देव नेवर टॉक्ट अबाउट दिस इशू। पीपल कीप आस्किंग यार कहाँ है डिफेंस में रहने वाले जो डिफेंस के इशू के बारे में बात कर रहे थे, एंड इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन, अनदर पर्सन हु वाज अपोजिंग पार्टी में थे जिन्होंने इसकी बात की थी कि मैं फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएंगे, फलाने करेंगे, प्लान डिस्कस किया कैसे करेंगे, काउंटर आर्ग्यूमेंट रखिए आप ये क्यों नहीं करते, फलाने क्यों नहीं करते, दूसरों ने भी कहा था नहीं कर पाए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। एट द एंड ऑफ द डे जब इशूज़ जो मेन कंसर्न होते हैं वो क्यों नहीं हो रहे, इज इट द सिस्टम्स फॉल्ट, इज इट द इंडिविजुअल्स के जो करना भी चाहता शायद नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ द माफिया और एनी अदर रीजन की, फिर एट द एंड ऑफ द डे हुज इन कंट्रोल, फिर आपकी गवर्नमेंट इज नॉट द पर्सन इन कंट्रोल, फिर जो लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं जिन लोगों का मफाद होता है, फिर एट द एंड ऑफ द डे दे आर द पीपल हु रनिंग द कंट्री।
ऐसे अजीब, हम असल में अजीब, हम डरपोक लोग हैं ना, असल में हम डरपोक लोग हैं, और ये चीज़ ना आपको ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं, आप नीचे से देखना, हर बंदा जब किसी टॉपिक के बारे में बात करेगा, जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी है, किसी जगह पर जॉब भी कर रहा है, वर्क प्लेस के अंदर भी है, तो वी डोंट केयर अबाउट व्हाट द ट्रूथ इज़, हक बात क्या है अमूमी तौर पे, मैं ऑब्वियसली ऑल जनरलाइजेशन आर रॉन्ग इंक्लूडिंग दिस वन, लेकिन अमूमी तौर पे देखा यह गया है कि जिस बंदे की रोज़ी रोटी उसके चुप रहने के साथ जुड़ी होती है वो बंदा कभी भी उन टॉपिक्स के बारे में बात नहीं करता, ये चाहे आप छोटे ऑफिस के अंदर देखें, चाहे आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखें, चाहे ये आप क्या कहते हैं हुकूमती लेवल के ऊपर देखें, आप ये चीज़ देखेंगे, और आप देखेंगे कि लोगों की जब नारेबाजी होती है, सबसे बड़ी अफसोस की बात है, जब नारेबाजी होती है देन वी टॉक अबाउट नेशनलिज्म पाकिस्तानी होने की बात, हम देन वी टॉक अबाउट रिलीजन पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, देन वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है, और उसके बाद हम उम्मत मुस्लिमा की बात करते हैं, हम उम्मत मुस्लिमा की बात करते हैं, मुसलमान होने की बात करते हैं, एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल स्टेप्स जो लिए गए हैं उन लोगों की तरफ से जिनको अल्लाह सुबहान तआला ने ये ताकत दी है कि वो कुछ कर सकें. डॉक्टर आफिया सदीकी, अगेन हमने कहा ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है जिनके बारे में बात नहीं की जा रही
क्योंकि अभी सामने आ गया,
अभी ये हॉट है इसलिए, ठीक है. इसके अलावा कितने और सारे लोग हैं जो कि गायब भी हैं, जिन लोगों के बारे में कुछ भी
नहीं पता,
ठीक है, जिंदा है नहीं है उनके बारे में नहीं पता,
बोलने वाला कोई है,
हमें ये नहीं पता कि आप छोड़ें लोगों को छोड़ें, चलें पर्सनल पाकिस्तानी लोगों को छोड़ें, आप ग्लोबल लेवल के ऊपर देख लें हम में से कितने लोगों ने जो है वो कश्मीर इशू के ऊपर प्रॉपरली बात उठाई है. कभी भी नहीं उठाई हम लोगों ने. हम उसके ऊपर उतनी बात करते हैं जितना वो इशू बस हॉट रहे, दैट्स इट. उसके बारे में कोई खातिर ख्वाह डेवलपमेंट कभी भी नहीं होती है. आप उसको छोड़ें, आप आगे हैं, आप उइगर मुस्लिम्स के साथ देखें चाइना क्या कर रहा है. हम में से किसी बंदे के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उनको पॉइंट आउट कर सके, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे उनके साथ सफारती और उनके साथ हमारे तजारती तालुकात हैं, इकोनॉमिक टर्म्स हमारे, वी कैन नॉट टेल देम कि आप ये बात गलत कर रहे हो. इंस्टेड हमारे लीडर्स ये कहते हैं हमें तो पता भी नहीं क्या हुआ बर्मा के अंदर क्या हो रहा है, वी डोंट केयर. सीरिया के अंदर क्या हो रहा है, हम उसके बारे में कोई बात नहीं करते. मुसलमान स्टेट्स जो हैं उनके बारे में कोई और स्टेप लेके, वो हमें पता है अभी रिसेंटली क्या हुआ, मुसलमान स्टेट्स जो हैं उनको उन जालिम लोगों को भी ऑन बोर्ड कर लेती हैं. हमें ये पता है कि यमन के अंदर क्या हो रहा है, हमें सब कुछ पता है कि गाजा स्ट्रिप के अंदर क्या हो रहा है, थ्रू आउट ईयर्स क्या हो रहा है. हम में से किसी शख्स ने कोई भी खातिर खा डेवलपमेंट फॉर द सेक ऑफ द उम्मा कभी भी नहीं की. हम जब भी बात करते हैं, जब वो हमारी इलेक्शन कैंपेन के लिए बेनिफिशियल होती है या जाती मफाद की बात होती है, नौकरी की बात होती है, प्रमोशन की बात होती है, तब हम उन टॉपिक्स को छेड़ते हैं, तब हम नेशनलिज्म को बीच में लेके आते हैं, तब हम कुरान की आयात बीच में लेके आते हैं, तब हम अहदीस बीच में लेके आते हैं. लेकिन जब करने वाले काम होते हैं, वी डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस. और इसमें मजे की बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कसूर जो है वो एक सिस्टम का भी कसूर है, और उसके बाद हमें जिस अंदाज में इस हमें कमज़ोर किया गया है इस सिस्टम के अंदर, वो उसके बारे में डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम इन द डिफेंस ऑफ द पॉलिटिशियंस एंड ऑल द लीडरशिप हमें ये बात मालूम है कि हम अगर पाकिस्तानी हैं या जनरली बहुत सारे मुसलमान ममालिक हैं, हम या मिलिट्री टर्म्स में या इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर हम बहुत कमज़ोर हैं. जो मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग है वो इकोनॉमिक टर्म्स में, और जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है वो मिलिट्री टर्म्स में, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है. कमज़ोर हम लोग इसलिए हैं, क्यों हैं कमज़ोर, हमें एक सिस्टमेटिक अंदाज में डेट के अंदर फंसा के, ठीक है, हमें कर्ज़ों के अंदर फंसा के, हमें करप्शन के अंदर जो है ना वो घुसा के, और भी ममालिक हैं, ऐसी बात नहीं, और ममालिक नहीं, वी आर ओनली इंटरेस्टेड अबाउट आर सेल्व, हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे करेंगे, उसके अंदर फंसा के हमें एक ऐसी सिचुएशन पर ला के खड़ा कर दिए जहाँ पर हम जो है वो अब खामोश हो चुके हैं. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, सुन्नत अबी दाऊद की और सुन्नत नसाई दोनों के अंदर यह हदीस मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दुआ करते थे, उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ तुझसे मासियत से, गुनाहों से, और बहुत भारी कर्जे के अंदर दबने से, डेट से मैं पनाह मांगता हूँ. तो एक शख्स था, उसने आगे से कहा कि आप कितनी मरतबा जो है वो एक ये जो कर्ज़ों से बचने की बात करते हैं, अल्लाह की पनाह मांगते हैं. तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से बयान किया कि जब इंसान भारी कर्जे के नीचे दबा हुआ होता है तो जब वो बोलता है तो झूठ बोलता है, और जब वो उसको जिम्मेदारी दी जाती है, जब वो बोलता है झूठ बोलता है, जब उसको जिम्मेदारी आती है तो उसमें वो खयानत करता है. तो ये हो रहा है, और हमारे सामने क्या हो रहा है, हम पॉलिटिशियन देखते हैं तो ये क्या और क्या हो रहा है.
एंड नॉट जस्ट दैट, देखिए मैं आपने बात कही, देखिए एट द एंड ऑफ द डे हमारी हम जहनी गुलामी से निकले नहीं हैं, हम जहनी गुलामी से नहीं निकले हैं. एट द एंड ऑफ द डे हम ये बात खुद तस्लीम करते हैं कि हमारी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, हमारी अपनी नज़र में हमारी सेल्फ इस्टीम नहीं है, हमारी अपनी कोई शनाख्त नहीं है, हम अपनी शनाख्त दूसरे के साथ ताल्लुक जोड़ने में करते हैं. आज हमने अगर अपनी कौम की बेहतरी के लिए अगर किसी ऐसे ममालिक से गैस या ऑयल का या एनर्जी रिसोर्स के लिए अगर हमने कोई कांटेक्ट करना पड़ा तो हम पहले जाके पूछते हैं कि पापा आप इजाज़त दे दें तो हम ये कर लें. हमारे अंदर खुद वो हिम्मत नहीं है. और वही बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी कि तुम्हारी तादाद इतनी होगी जितना समंदर की झाग होती है, लेकिन तुम में जो मौत का डर और दुनिया की मोहब्बत जो आ जाती है, आप इस मुल्क को किस शनाख्त की बिना पर आपने बनाया था, आपने इस्लाम के नाम पे बनाया था या आपने बोला था कि हम एक अलग ही कौम होंगे, हमने इस्लाम के नाम पे बनाया था, आपने किस तकलीफ़ा से गुजरे थे, आपने क्या अपने आप को अभी भी आज़ाद नहीं किया है, आप अभी भी इस बात पे फोकस नहीं करते हो कि हमने अपने पैरों पे खड़ा होना है. आज एक छोटी सी क्रीम जो कि शायद ऑस्ट्रिया से लेकर थाईलैंड से लेकर पता नहीं नेदरलैंड से लेकर फिर पता नहीं कहाँ पे जाती है, और फिर भी वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं. आपके पास नेचुरल रिसोर्स इतने ज़्यादा हों, आप उसके बावजूद भी अपने आप को कर्ज़ों में दबा रहे हैं, आप उस कर्ज़ों से निकलने की नहीं कर रहे. बिकॉज देखिए एट द एंड ऑफ द डे ये कर्ज़े देने वाले कर्ज़े देने वाले कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप इनसे आज़ाद हों, बिकॉज वो और इनके कर्जों के तले दबे रहेंगे तो आप इनकी शरायत को मानते रहेंगे, फिर आप जब को जब अपने लोगों को बेचना पड़ेगा अपने आप को अपनी हुकूमत बचाने के लिए, कर्जों से बचाने के लिए, आप वो बेचने के लिए तैयार रहेंगे, आपने अपने ईमान को बेचना पड़ेगा आप करेंगे, क्योंकि आपका असल में जो ईमान है अल्लाह ताला पर नहीं है, आपका डॉलर्स के ऊपर है। और अब एट द एंड ऑफ द डे जो आता है वो बोलता है कि ठीक है मैंने इस टाइम पीरियड में जितना अपना बनाना है, अपनी कौम को बनाना है, अपनी घर वालों को बनाना है, मैं बना लूँ, मुझे पता है इस कॉम के लिए मैं कुछ नहीं करता,
इलेक्शन जीत जाऊं ये मेरी प्रमोशन हाँ। हो जाए, दैट्स इट। और ये कर्जों का मामला तो इतना खतरनाक मामला है, हमारे सलफ जो है वो किसी को कर्जा देके उस बंदे के घर की जो है ना वो साए तले भी खड़े नहीं होते थे कि कहीं इस बंदे को ये ना महसूस हो जाए कि मैंने इसको क्योंकि कर्जा दिया था तो नाउ आई एम एंटाइटल टू इट कि मैं अब इसका इससे बेनिफिट ले लूँ, तो वो इस चीज़ से इतना डरा करते थे कि उस बंदे के अब ये ना हो कि उसके जहन में ये आ जाए कि आई एम यू नो अब्यूजिंग हिम, और हम यहाँ पे अब्यूज़ हो भी रहे हैं और उसके बाद हम उस पर प्राउड भी फील कर रहे हैं। और मज़े की बात, अब आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि सर जो लोग हमें सुन रहे हैं ना वो इस बात से एग्री कर रहे होंगे, हाँ हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और हमारे मुल्क में ऐसे ही हो रहा है, अनफॉर्चुनेट बात है, और हमारे हुक्मरान भी ऐसे हैं, हमारी लीडरशिप भी ऐसी है, और लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या, प्रॉब्लम ये है कि ये डीप रूट मसला है, इसकी सोल्यूशन की तरफ हम ये सोल्यूशन हम लोगों से शुरू होगी। अभी हमने दो नंबरी की बात की, दो नंबरी हमारी डीप रूटेड हर बंदे से शुरू होता है, वो कोई बंदा दुरुस्त नहीं करना चाहता। आपने कॉम्प्लेक्स की बात की वजी भाई कि हम जो है वो कितना डीपली रूटेड है, हमारे अंदर जो है वो इन्फेरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कितना डीपली रूटेड है। आप दूर क्यों जाते हैं, आप छोड़ें हुक्मरानों को, वो क्या करते हैं जब कोई वफ्त बाहर से आता है, कोई डेलीगेशन आती है, उनको छोड़ें, वो क्या करते हैं, आप अपनी बात करें। आप में से किसी बंदे का बच्चा अगर यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होगा ना अगर, तो यू वॉन्ट केयर कि वो पढ़ रहा है, अच्छा ठीक है। लेकिन आपका बच्चा अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आपका बच्चा अगर US के अंदर, UK के अंदर, किसी थकी हुई यूनिवर्सिटी का जिसका नाम भी आपको नहीं पता, रैंकिंग में कहीं पर नहीं आती, जिसकी एक्रेडिटेशन भी नहीं, वो वहाँ से पढ़ के आता है ना, हमारा बच्चा तो जी UK से पढ़ गया, US से पढ़ गया, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये हम लोगों के अंदर इन्फेरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त हम ये बात करते हैं, हमारे मुल्क के अंदर ये लोग जो इस वक्त हुक्मरानों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अमेरिका को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हम UK को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और गुलामी नहीं करेंगे हम, ये वाले नारे भी लगाते हैं साथ साथ, इन लोगों को जब पहला मौका मिलता है तो ये कहते हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग। क्यों? क्योंकि जिन मुल्कों से हमने आज़ादी ली थी हमने वापस उन्हीं में घुसना जाके, क्योंकि वो तुम्हारे खैर खा होंगे, जहरी बात है, तो यहाँ पे वो तुम्हारे खैर खा हो ही नहीं सकते, डेफिनेटली यहाँ पे तो चोरों छक्के हैं सारे के सारे, तो जाओ वापस उन्हीं के पास जिनसे हमने लड़ाई लड़ी थी और उन्हीं के पास जाके वापस जाएं, क्योंकि वही हमारे बेनिफिशरीज हैं हक असल में।
दिस इज़ व्हाट ऑप्रेसर्स डू, दे नेवर एक्चुअली लेट यू सेट फ्री। आपको लग रहा है कि आपने आज़ादी ले ली लेकिन उन्होंने आपको वाकई तौर पर आज़ादी नहीं दी थी, उन्होंने ठीक है यार तुम्हें अपना अलग से प्लॉट चाहिए ना तो अपना प्लॉट ले लो, लेकिन वो रहेगा असल में हमारी कंडीशंस के ऊपर। जो आपको कर्जे दे रहा है वो आपको खाली कर्जे नहीं दे रहा, वो आपके साथ अपनी जो कंट्रोल है वो भी साथ में चाहता
Absolutely.
है, वो आपको अपनी शरायत चाहेगा और वो आपको कर्जे देकर अपना जो है ना मामला बनाता है। अब मामला क्या आ गया, अब डॉलर डाउन हो रहा है, कर्जे दे दे के ये आपको बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को अपना डॉलर का मेंटेन कर रहे थे, अब जब चुकी है रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, गैस लाइन को उन्होंने तबाह करने की कोशिश की जो कि इनडायरेक्टली बाइडेन ने कहा भी था, इवेंचुअली क्या हो रहा है कि अब ये परेशान हो रहे हैं कि अब हमारा कंट्रोल चला जाएगा, एंड वी विल हैव टू गो बैक टू डॉलर्स नाउ,
और खुद डिफॉल्ट
बिटकॉइन वगैरह डिजिटल करेंसी भी बनाई। बात यहाँ पे हो रही है कि देखिए आपको जो कर्जा देगा ना वो कर्जा देता रहेगा, वो आपकी कौम को और आपकी आपको और आपके मुल्क को इज्जत की नज़र नहीं देखेगा, इज्जत की नज़र से चाहे जितना, बिकॉज आपकी पावर आपकी इज्जत आपकी लैंड एरिया से नहीं होती कि आपकी कितनी बड़ी ज़मीन है आपके पास, बट आपकी अपनी इंटेग्रिटी से होती है कि आप क्या अपने कौम की कंसर्न्स रखते हैं। वो इंडिविजुअल था जिसने कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन किताब लिखी थी, उसने ये बात बोली थी ना यार हमने फना फना लीडर्स को मारने की कोशिश की, क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों के साथ सिंसियर थे। हमने तरीका ये होता है कि हम सबसे पहले लोगों को जो है कर्जों के तरह दबाते हैं, फिर अगर वो उनसे क्या अपनी बात मानने की कोशिश करते हैं कि हमारी बात माने, अगर उनके लीडर्स बात नहीं मानते तो हम क्या करते हैं, हम इकोनॉमिक असैसंस भेजते हैं। इकोनॉमिक असैसंस क्या होते हैं कि मुल्क को ऐसे कर्जों में डालो कि कम से कम जो है ना वो कर्जों के तले जो है ना खुद ही खत्म हो जाए,
रिपे कर ही नहीं सके,
और अगर नहीं तब भी नहीं होता ये बात तो फिर हम क्या करते हैं, हम हिटमैन भेजते हैं कि वहाँ के जो लीडर्स हैं जो रास्ते की रुकावट बने हुए हैं उनको कत्ल कर दिया जाए, और अगर वो भी नहीं होता तो फिर हमारा तीसरा ऑप्शन ये होता कि हम वहाँ आर्मी भेजते हैं।
आर्मी भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है, अमूमी तौर पर जहाँ पे ऑलरेडी काम हो जाता
है ना, इराक में भेजा है, अफगानिस्तान में भेजा है, जो लोग इनके अपने थे बाद में इनके खुद खिलाफ खड़े हुए कि हमने बोला कि हमने गोल्ड में करना है, कदाफी ने किया, सद्दाम हुसैन ने किया, तो इन्होंने क्या किया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का नाम कह के वहाँ पे कर दिया। आज कोर्ट में लाया जाए ना इनको कि कहाँ कौन सी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिली। डॉक्टर आफिया के बारे में बात हो रही है, डॉक्टर आफिया का की डिमांड जो थी, जो उनका क्लाइव जो लॉयर है उसने बात बोली कि यार शी हैज़ द राइट टू नो कि उनके बच्चे को कत्ल किया गया है या वो जिंदा है, शी हैज़ द राइट टू नो। अगर आपने उनके ऊपर कोई रूलिंग नहीं दिया,
जेल के अंदर भी राइट टू इंफॉर्मेशन तो होती है,
जंजीरों में यार वो औरत जंजीरों में है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसको अपनी फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा, वो आपको मिलने के लिए भी प्रेशर में इसलिए आके दी बिकॉज नाउ इट इज आउट इन द इंटरनेशनल मीडिया। अदरवाइज आपने कितने लोगों को दबा दिया, मार दिया, ख़त्म कर दिया, नामो निशान मिटा दिया, उनकी बॉडियों में चला दिया। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इनकी इंटेग्रिटी देख रही है गवर्नमेंट की बता रहा हूँ, सीआई की। एक आदमी ने उन्हीं के मुल्क में अपनी माँ की बॉडी को डोनेट किया फॉर रिसर्च पर्पजेस, लेटर ऑन उसको पता चला कि वो इंटेलिजेंस वालों ने या सीआई वालों ने बॉम्ब बांध के उनकी माँ को वो टेस्टिंग के तौर पे तबाह कर दिया टू बी एबल टू एक्सपेरिमेंट ऑन इट। ये अपने लोगों के साथ ये काम करते हैं, इनके ने इंसानियत किस बात की, ये तो सिर्फ और सिर्फ पावर कंट्रोल के उसमें
है। ऐसी है
तो आप नहीं कौम खड़ा होगी, खड़ी होगी, अपनी आइडेंटिटी बनाइए अपने। आपने लड़ने की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, लड़ने का मौका आएगा तो अल्लाह ताला वो लड़ने की हिम्मत भी हमारी कौम को दे। हम ये बात बोले यार अपनी अपने हक के लिए आवाज़ उठाना बनो, अपने हक के लिए खड़े होना रखो कि यार दिस नो एम सॉरी, ये मेरे लोगों के लिए नाइंसाफ़ी है, तो लोग आपको अपने बराबर बैठाएंगे। अभी आपको बराबर नहीं बैठाते, अभी आपको बुला के बोलते हैं यार ये है, दे ट्रीट यू लाइक डॉग्स, और आपका जो भी इज्जत से आवाज उठाने वाला होता है फिर उसको जलील करते हैं, उसको बदनाम करते हैं, और उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं।
इसी कमजोरी की वजह से हमारे मुल्क के अंदर पिछले 20 साल के अंदर, पिछले 30 साल के अंदर जितने मसाइल हुए, आप मुख्तलिफ वॉर से लेकर, मैं किसी चीज़ का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, क्या क्या एग्जैक्ट वाक़ात हैं, इस्लामाबाद के एफ सेक्टर के अंदर कौन लोग घूमते फिरते रहे और कौन लोग एक्टिविटीज़ करते रहे, सबको मालूम है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ठीक है। हमारे मुल्क के अंदर जो मिलिट्री ऑपरेशन होते रहे वो हम सबको पता है कहाँ से चलते रहे, हमारे मुल्क के अंदर से चलते रहे, वो सबको पता है वो कहाँ पे होते रहे। हमारे मुल्क के अंदर जो धमाके होते रहे, जो धमाके हमारे मुल्क के अंदर होते रहे, वो हम सबको पता है कि वो जिम्मेदारी किससे कबूल करवाई जाती थी और एक्चुअल में वो धमाके कौन करवा रहा होता था, ठीक है। ये चीज़ें ये बातें हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, ये वो लीडर्स जो अब रिटायर हो चुके हैं या अपने डेथ बेड्स के ऊपर हैं, उन्होंने या अब गुजर चुके हैं, उन्होंने अपनी किताबों के अंदर ये चीज़ें ये एतराफ़ात किए हैं सारे के सारे, उन्होंने कहा ये चीज़ें हुई थी और ये हमने सब।
जब भी आपका मुल्क थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पर तमीज़ का होता है कि क्रिकेट की टीम बाहर से आती है, फनामो आती है, आप देखिए किस तरह से हालात ख़राब कर देते हैं, चाहे वो मैं ये बात बोलूँ कि आउटसाइड जो लोग हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि आपके मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी आए, क्योंकि आप अपने मसाइल में घिरे रहेंगे तो आपके लोग बिकने के लिए तैयार रहेंगे, आपके लोग बिकने के लिए तैयार रहेंगे, आप उनके कर्ज़ तले दबे रहेंगे। और एट दी एंड देखिए अभी अक्सर लोग सोशल मीडिया पे आके इंडिया पाकिस्तान की कंपैरिजन करते हैं कि इंडिया कहाँ पहुँच गई, एप्पल आ गया, फना वो आ गया, ये हो गया, ये बन रहा है, हम तो पीछे रह गए, हम तो इसी चीज़ में लग गए, टांग उठाने में लग गए वाघा बॉर्डर की। तो बात यहाँ पे हो रही यार, इस मुल्क ने 2001 से वॉर ऑन टेरर का साथ दिया है, ठीक है, उसका हिस्सा बना है ये, इसने अपने स्कूल के बच्चों को APS बच्चों को कत्ल होते हुए देखा है, मासूम बच्चों को कत्ल होते देखा, यहाँ पे आए दिन बम धमाके होते रहे, विच आप शायद आज के बच्चे तो ना जानते हो, लेकिन हमने इसको नॉर्मल देखा है
बॉर्डर की, हम दोनों तरफ से बॉर्डर की दोनों तरफ अपने से।
हमने यहाँ पे ऐसे मौके देखे कि PC के अंदर अमेरिकन सोल्जर्स आए हैं और उन्होंने एंट्री पे बात मानने से मना कर दिया और फिर पता नहीं क्या क्या मामलात हुए, एजेंसीज हुई हैं, लोगों को टारगेट किलिंग करके मासूम लोगों को मारा गया है, क्या क्या नहीं किया गया इस मुल्क ने, क्या दे वो ऐसे वो मुल्क कैसे डेवलप करेगा जब इतनी स्ट्रगल्स में उसने टाइम गुजारा हो।
ऐसी
यू हैव टू बी एबल टू मेक अ फेयर कंपैरिजन, बट द फैक्ट इज़ कि देखिए अब बात आते हैं कि जो रियलिटी की बात है, देखिए हमने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात इसलिए कर रहे थे कि देखिए आई थिंक वी नीड टू बी एबल टू स्टैंड अप एंड बी एबल टू रेज अ वॉइस विद रिगार्ड्स टू हर राइट, कि देखिए वो हमारी कौम की शहरी हैं, हमारी बहन है, और आई थिंक इट्स अबाउट टाइम, अगर उनके पास कोई केस साबित नहीं हो रहा, बंदूक छीनने वाली फना वाली बात उम्र कैद की नहीं होती, वट एवर फॉल्ट शी वॉज देयर आई थिंक इफ एनी शी सर्व्ड हर टाइम, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर कोई प्रूवन केस हो तो वो उनको या तो जिंदा रखें या सजा ना दें या कोई वर्डिक्ट क्लियरली आके ना करें।
यू कांट कीप हर हैंगिंग फॉर हर लाइफ टाइम,
आई थिंक शी नीड्स टू बी एबल टू हैव अ राइट टू बी एबल टू मीट हर फैमिली BOA है, और अगर यहाँ से कोई ऐसा ताल्लुक है जहाँ पर उनका कोई केस है, कोई उनका क्रिमिनल ऑफेंस है, तो आई थिंक शी दिस नीड्स टू बी हैंडल्ड विद द सेम कंट्री कोर्ट, और उससे वो बेसिकली डिसीजन लें. आई थिंक ये फेयरनेस और जस्टिस का तकाजा ये है. इंसानियत भी ये कहती है, देखिए एट द एंड ऑफ द डे आप अपने लोगों को खुद ओन करें, अपने लोगों की जो जो लाइव्स है उसको सैंक्टिटी बख्शें. और ऐसे बहुत से सारे लोग हों जिनके बारे में नहीं पता, उनकी फैमिलीज़ को राइट बनता है कि वो उनको पता रहे, ताकि हम में से कोई भी नहीं चाहेगा. देखिए हम में से जब हम जब खुद गुजरते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि क्या चीज़ अल्लाह ताला हम सबको बचाए. बट ये कि आई थिंक एवरी इंडिविजुअल हु आर पार्ट ऑफ दिस कंट्री, हु इज़ पार्ट ऑफ दिस उम्मा, और इवन मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, हमें उस लाइफ की, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि यार लाइफ की सैंक्टिटी, आखिर खुद में क्या कहा था, लाइफ की सैंक्टिटी. एक मोमिन की मिसाल क्या दी थी कि काबे से भी बढ़कर उसकी मोमिन की. उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या कहा था कि मैं तुम्हें हिजर हज़रत अस्वद को इसलिए नहीं चूमता क्योंकि तुम्हारी मेरे सामने एक अहमियत है, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए चूमता हूँ क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमते हुए देखा है. और एक मोमिन का दिल तोड़ना, उसकी जान की डिसरिस्पेक्ट करना काबे को ढाने से भी ज़्यादा बड़ा है. तो आप हम इसलिए इशू रेस कर रहे हैं बिकॉज फॉर अस शी इज़ आवर सिस्टर, शी इज़ पार्ट ऑफ आवर उम्मा, शी इज़ पार्ट ऑफ आवर नेशन, एंड अलॉन्ग विद ऑल दोज जिनका नाम हमें नहीं भी पता, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे. एंड हम चाहते हैं कि यार हम सोशल मीडिया पे हमारे जो यंगस्टर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उस बारे में बात करें. एंड इंशाल्लाह वी आर क्लोज कि हम वहाँ तक पहुँच गए. आई थिंक डॉक्टर फौजिया भी उनसे मुलाकात की है, और जो उनके लॉयर हैं क्लाइव उन्होंने भी बात की है, सेंटर मुश्ताक साहब भी गए हैं. एंड सून उम्मीद है कि शायद इंशाल्लाह ताला आ जाएं.
अगर हमारी तरफ से भी कोई स्टेप्स होंगे,
अगर हमारी तरफ से कोई इंटरेस्ट शो किया गया, तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ इंटरेस्ट शो करें, लेट दिस चैप्टर गेट क्लोज अलॉन्ग विद योर ओन पीपल. अपने नेशन को या अपनी कौम को ये बात को का हक है कि आप बताएं कि आपके बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो लोग इस बात पर डिमांड कर रहे हैं. बहुत से लोग अपने माँ बाप से नहीं मिले, अपने बच्चों से नहीं मिल पाए. आई थिंक अगर हमें अल्लाह ताला के सामने खड़े होने का खौफ है, एक दिन हमें एक दिन जवाब देना है, तो हमें इन चीज़ों के बारे में बात करने की ज़रूरत है.
एब्सोल्युटली. और हमारे पास तो एक जीती जागती मिसाल भी है ना कि मलाला यूसुफ ज़ई की हमारे पास मिसाल मौजूद है ना. उनको गोली लगी, शी सफर्ड. ठीक है, उनको गोली लगी, शी सफर्ड. तो हमने उनको बाकायदगी से उनकी ड्यू रिस्पेक्ट भी दी, हमने उनको इंसाफ भी दिलवाया, और वो जिस चीज़ के लिए फ़ाइट कर रही थी, वट एवर शी स्टूड अप फॉर, वो चीज़ भी हमने उनको दिलवाई. यानी उनको इंसाफ हमने दिलवाया, और वो दुनिया के लिए मिसाल के तौर पे हमने उनको सामने लेके आए. तो अब यहाँ पे जस्टिस क्यों नहीं हो रही है? व्हाट्स स्टॉपिंग द वेस्ट इन डूइंग इट? व्हाट्स स्टॉपिंग अस इन डिमांडिंग दैट? तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि सेलेक्टिव जस्टिस इज़ इनजस्टिस. ये कोई जस्टिस नहीं होती कि आप जो है वो अपने सेलेक्ट लोगों के साथ या कुछ लोगों के साथ जो अच्छे लग रहे हैं, जिनके साथ कोई मसला नहीं है, उन लोगों के साथ आप जस्टिस कर लें, और जिन लोगों के साथ जो है ना वो आपको कोई मफाद अटैच नहीं है आपका, तो उन लोगों को जो है ना वो आप जलने के लिए और घिसने के लिए और उनके साथ ज्यादतियाँ होती रहें, यू वोंट केयर अबाउट देम.
एक मुनाफिक का मामला ये रहता है देखिए कि वो ये देखता है ना, दोनों जगह से अपनी पॉसिबिलिटीज़ रखता है कि मैं यहाँ से भी ना जाने दूँ, यहाँ से भी ना जाने दूँ. और जहाँ पे पावर होती है ना, तो वहाँ बोलता है ठीक है यार इसके फेवर में, ताकि मुझे ज़्यादा लॉस ना हो. आई थिंक हमारे मेजोरिटी ऑफ द लोगों को ये बात सोचने की ज़रूरत है कि वी नॉट सेलेक्ट, वी शुड बी सेलेक्टिव इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग आर बैटल्स. कि यार लेट्स ओनली सेलेक्ट दोज बैटल्स जिसमें हमें लूजिंग चांसेस नहीं है. बट वी नीड टू बी एबल टू हैव दिस एटीट्यूड कि हम हक के लिए बात उठाएं, हक के लिए आवाज़ उठाएं, और हम हक की आवाज़ के उठाने में भी जुल्म ना करें. मैं बात हमेशा इंग्लिश से कहूँ कि हक की आवाज़ उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप बदतमीज़ी पे आ जाएं, आप रोडों पे तोड़फोड़ करें, आप अथॉरिटीज़ को चैलेंज करें, आप अथॉरिटीज़ की जो रिस्पेक्ट है उसको वो करें, अपनी गवर्नमेंट को गाली गलौज करें सोशल मीडिया के ऊपर, थ्रेटन करें, आर्म्स एंड एमिनिशन उठाएं. देखिए हम ये नहीं कह रहे, ये हमने शुरू में क्लैरिटी दी.
एग्जैक्टली,
विजिलेंटी जस्टिस. हम बात करते हैं कि जो पढ़े लिखे अंदाज से, तमीज़ के अंदाज से आप बात करते हैं, प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, ताकि आपके लीडर्स को उस बात की अहमियत पता हो. बिकॉज देखिए हम ये बात जानते हैं कि हर कोई बुरा भी नहीं है और कोई अच्छा भी नहीं है. तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको रियलाइज होती है ठीक है लोग जो है बात कर रहे हैं, लोगों के अंदर इस बात की अहमियत उजागर हो रही है, तो इसके बारे में कुछ ना कुछ डिसीजन लेना ज़रूरी है. तो बहुत से लोग अपने लोगों को चुप कराने के लिए भी करते हैं. फॉर दिस रीज़न वी डू सो, वी आर नॉट वेटिंग फॉर इट, वी आर ओनली प्लेइंग आर पार्ट वट एवर वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर. कि हम लोगों के बारे में अगर अल्लाह ताला ने हमसे क़यामत के दिन पूछा, अल्लाह ताला हमारे लिए मामला आसान रखे, कि तुम्हारे पास चार माइक ही थे, तुम्हारे पास 10 फॉलोअर्स थे, 10 लोग सुनते थे तुम्हें आके, 20 लोग आगे सुनते थे, तुम एक दफ़ा बात कर लेते इस मामले में, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती थी क्या? तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी दर्द नहीं था अपनी मुसलमान मुसलमान भाई और बहनों के लिए? और मोमिन की, मुसलमानों की उम्मत की क्या निशानी है कि उसके जिस्म के एक हिस्से में दर्द होता था, पूरा जिस्म को दर्द होता? और ये खाली हमारे लिए डॉक्टर आफिया का मामला नहीं है, हमारे जो यमन के मुसलमान हैं, अफगानिस्तान के हैं, हमारे सीरिया के हैं, हमारा चाइना के हैं, हमारे इंडिया के मुसलमान हैं, हमारे दुनिया के कहीं के भी ममालिक हैं, अमेरिका के मुसलमान हैं, जिसके साथ भी नाइंसाफ़ी होती है। हम अपनी सतात के मुताबिक कोशिश करते हैं कि हम वक्तन फ़वक्तन उनके बारे में बात करें और अपनी ज़िम्मेदारी को फुलफ़िल करें। अल्लाह ताला इनसे बड़ी हमसे ज़िम्मेदारी ले, हम इंशाअल्लाह ताला उसको वो करें और अल्लाह ताला के सामने जिस इम्तिहान में भी हों हम इस बात को साबित करें कि हम अल्लाह सुबहाना ताला हमने अपनी सतात के मुताबिक जो हम कर सकते थे हमने किया, ताकि कम से कम हमें अल्लाह सुबहान ताला की रज़ा हासिल हो। हमें लोगों से कुछ नहीं चाहिए इंशाअल्लाह ताला, हमें लोग वो दे भी नहीं सकते जो हमें चाहिए।
exactly.
और हम अल्लाह सुबहान ताला से इस बात को कर रहे हैं कि कल को ऐसा ना हो कि, और ये करने का अक्सर मकसद ये कि हमारे अंदर की जो आवाज़ है ना, जो कॉन्शियसनेस, वो जिंदा रहे। क्योंकि अगर हम ये बातें ना करें ना, तो हम भी शायद उस सोशल प्रेशर और उस गो विद द फ्लो के शिकार हो जाए। एंड वी स्टॉप इन डू दिस। एंड फॉर दिस रीज़न इस टॉपिक के ऊपर बात करने हमने अहम समझा कि चूंकि इट्स द प्रेसिंग कंसर्न एज अ ऑर्गेनाइजेशन हु स्पीक्स फॉर द यूथ एंड इज कंसर्न फॉर द यूथ, वी नीड टू बी एबल टू डू दैट। हसन, कुछ जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ
जैसे अभी प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे या अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे थे, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये समझते हैं ना कि प्रोटेस्ट करके हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया और हमने बहुत आवाज़ें उठाई, बड़ी चीखे पुखार, मतलब रोड पे आके आपने चीखे मारी, लेकिन असल चीज़ ये है कि एज मुस्लिम्स हम लोग का कॉन्सेप्ट अकीदा ये है कि जब भी आप कुछ करने जाते हैं, उससे पहले आपने ये देखना चाहिए कि क्या मैं अल्लाह सुब्हान व तआला को ऑन बोर्ड ले रहा हूँ इस मामले में या नहीं। तो हमारे लिए तो दुआ जो है वो एक हथियार की एक वैल्यू रखता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक उसका मफहूम है। तो हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि क्या मैं अपने दुआओं में वो चाहे कोई भी कंसर्न हो, चाहे वो डॉक्टर आफिया का मामला हो या अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ें हो, तो उसमें अल्लाह सुब्हान तआला से मदद मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ या नहीं। दैट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर डिसाइडिंग फैक्टर्स। तो अमली इकदाम जो भी मेजर्स हैं वो ज़रूर लें, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह सुब्हान तआला से जो दुआ वाला मामला है वो उसको ज़रूर करें। और इसी तरह जो अभी मैं कुछ डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, लास्ट जो उनकी जो सिस्टर हैं, तो वो बता रही थी कि जब उनसे कन्वर्सेशन हो रही थी तो उसके दौरान जब उनके बच्चों का जिक्र आता था तो शी वुड स्टार्ट वीपिंग। वैसे भी ज़ाहिर है शी वाज वेरी इमोशनली डिस्टर्ब, लेकिन ये कि शी वुड स्टार्ट मेकिंग दुआ, मतलब उसी हालत में। तो मैं सोचता हूँ सुभान अल्लाह, मतलब क्या उनका ईमान का लेवल होगा कि उस एक्सट्रीम लेवल ऑफ
टॉर्चर,
ज़ाहिर है उस वक्त तो शायद टॉर्चर में नहीं, लेकिन वो मेंटली तो इंसान टॉर्चर से गुजर ही रहा होता है।
और इंसान को अगर कोई जिस्मानी तौर पे भी टॉर्चर ना करे ना, और कुछ हफ्तों के लिए कमरे बंद में रख दे, वो वैसे ही
उसका पोस्ट
साइकोलॉजिकल टॉर्चर से गुजरता है
डेफिनेटली। तो उस हालत में भी इस माना उनको अल्लाह ताला का जिक्र या दुआ करना नहीं भूला। मैं बोलता हूँ हम लोगों को वट इज़ स्टॉपिंग अस, हम तो अपने घरों में कम्फर्ट जोन में बैठे हैं आराम से, तो हमें भी इस चीज़ को सोचना चाहिए और स्पेशली इस चीज़ को लेते हुए। और इसी तरह हमने मौज़म बैग का जो एक और हमारे भाई उनका जिक्र किया, तो उनकी एक स्टोरी आती कि वो जब उनको एक दफ़ा शैकल्स में बांध के लेके जा रहे थे, तो एक उनको इस तरह से एक टैप सी महसूस हुई कुछ गालबन, इस तरह करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो वो कह रहे थे कि सलाह सलाह कुछ इस तरह करके कुछ गालबन आवाज़ आई थी कि नमाज का टाइम हो गया था। तो और फॉर दोज हु डोंट नो, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप मतलब इफ़ यू आर इन जेल और आपके पास यानी कोई वजू करने कोई ज़राए नहीं है, और इवन आपकी चाहे मेजर इम्प्योरिटी या माइनर इम्प्योरिटी का भी मामला हो, तो उसमें भी यानी मतलब आप बिल्कुल बंधे हुए, तो उस हालत में भी आप इशारे के फॉर्म में भी नमाज़ पढ़ सकते।
कुछ वो कहते हैं वजूहत की बिना पे आपको वजू करने का मौका नहीं है, तो फिर आप वजू ना कर सकते।
तो सुभान अल्लाह, उनको जब वो चीज़ रियलाइज़ हुई कि नमाज का टाइम हो चुका है, तो उन्होंने उसी स्टेट में यानी जब गार्ड्स उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे, तो उन्होंने उसी स्टेट में फिर नमाज जो है वो पढ़ी। तो सुभान अल्लाह, मतलब उस स्टेट में भी अल्लाह सुभान अल्लाह ने उनको तौफीक दी। तो इससे भी हम कोरिलेट करें कि क्या हमारा नमाज सलाह के साथ क्या मामला है।
एट द एंड ऑफ द डे मैं सब सोचता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि दुनिया के हिसाब से हमें शायद लगता है कि ये लोग बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं, जो कि बिलाशक बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं। बट आप देखें, अगर इस मुश्किल से गुजरने के बावजूद भी अगर वो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ में मज़ीद आगे बढ़ गए और अब उनकी ज़बान पे अल्लाह सुबहाना ताला का ज़िक्र है, अल्लाह सुब्हान तआला से मांगने की स्पिरिट है, तो एट द एंड ऑफ द डे क़यामत के दिन इनको जब रिवॉर्ड दिया जाएगा इंशाअल्लाह तआला, तो लोग तमन्ना करेंगे यार इनकी जगह हम होते। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब क़यामत के दिन लोगों के सब्र और मुश्किलात के में मुब्तला होने की वजह से जो उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो लोग उनको देख के कहेंगे काश दुनिया में हमारे चेहरों को कैंचियों से और छुरियों से काट दिया जाता, ताकि हम भी जो है ये वाला रिवॉर्ड हासिल करते। क्योंकि अल्लाह सुबहाना ताला की दुनिया में जो तस्वीर दी है ना इनामात की, तो वो तो दुनिया के हिसाब से है। तो अल्लाह सुबहाना ताला तो खालिक है, अल्लाह सुबहाना ताला तो हर चीज़ को पैदा करने की कुदरत रखता है। तो अल्लाह ताला तो ऐसी चीज़ आपको दे दे, चाहे आप बोलो यार इसके लिए मैं अगर 100 दफ़ा भी अपनी जान कुर्बान कर देता तो मेरे लिए इट वुड बी वर्थ इट। तो अल्लाह सुब्हान तआला जब खुद बोलेगा कि ये हमेशा बाकी रहने वाली चीज़ मैंने बनाई है तुम्हारे लिए, तो इंसान बोलेगा यार इट वाज ऑल वर्थ इट। एंड वल्लाही इंसान बोलेगा कि यार इट वाज वर्थ इट। आप जिस मुश्किल से भी गुजर रहे हो, जिस तकलीफ से भी गुजर रहे हो आप, अल्लाह कभी भी आपके सब्र को ज़ाया नहीं करेगा अगर आप उसको खुद ज़ाया ना करो। आप अल्लाह सुब्हान तआला के करीब जो, अल्लाह तआला से सब्र की दुआ मांगो, अल्लाह सुब्हान तआला से उम्मीद रखो, और आप देखो अल्लाह सुब्हान तआला आपके लिए ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी ऐसा देगा कि आप बोलोगे यार अल्लाह तआला इट वाज वर्थ इट, एंड आई थैंक यू अल्लाह सुब्हान तआला कि तेरा शुक्र है तूने मुझे इस मुश्किल में डाला।
ये कितनी कितनी हंसने वाली बात है दुश्मन के लिए कि वो उनका अल्टीमेट गोल ये है कि हम नाकाम हो जाएं, हम ज़लील रुस्वा हो जाएं, लेकिन उन बेवकूफ़ों को ये बात मालूम ही नहीं है कि मुसलमान की कामयाबी यहाँ पे है ही नहीं। तो आप जिस चीज़ के ज़रिए हमें नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं, दर हकीकत आप हमें कामयाबी की और करीब कर रहे हैं, और आप ज़रिया बन रहे हैं हमें कामयाबी तक पहुँचाने का बाय ओप्रेसिंग अस और जुल्म व ज़्यादती करके। तो वही बात है कि मुसलमान मोमिन जो है वो तो हर हालत के अंदर वो तो बेनिफिट में ही जा रहा है,
हर हालत में कामयाब,
हर हालत में कामयाबी में जा रहा है,
बिकॉज उसका जो असल मामला है वो ईमान है। अगर वो इतना ईमान बचा लेता है तो उसके लिए कामयाबी है, और ये हमें देखने की ज़रूरत है। जाते जाते को आप कुछ कहना चाहेंगे?
सर जी यही कहेंगे कि दुआ करें अपनी बहन के लिए, सिर्फ इनके लिए भी नहीं, जितने भी लोग जो ओप्रेस्ड हैं, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा सिर्फ मुसलमानों तक भी बात महदूद ना रखें। जहाँ कहीं भी इनजस्टिस हो रही है, मुसलमान का काम ये है कि वो किस्त यानी इंसाफ को कायम करने वाले होते हैं, तो हम भी जो है वो अपने घरों से शुरू करें, अपने औलादों से शुरू करें, और जहाँ जहाँ पर हमारे पास जो जो अथॉरिटी अल्लाह सुब्हान तआला ने दी है वहाँ पर इंसाफ कायम करें, और वहाँ पर अपनी कभी भी अपनी सीट का, अपनी पोजिशन का, अपने ओहदे का, अपने मर्तबे का, अपने रिश्ते में बड़े होने का गलत फ़ायदा कभी भी ना उठाएं, चाहे घर के अंदर हैं चाहे अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। जो बंदा इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करता है उसकी अल्लाह सुब्हान तआला के यहाँ बहुत पकड़ है, क्योंकि जिनके रुतबे हैं सेवा उनकी सेवा मुश्किल है। जितने आपको पावर दी गई है उतनी, जितनी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो आपको उतनी पकड़ भी होगी, आपकी अकाउंटेबिलिटी भी वैसी होगी।
मैं भी ये बात करूँगा जाते जाते कि देखिए हमारे हुक्मरानों से कि अगर आप जिन लोगों को मानते हैं अम्बिया के बाद, रसूलों के बाद, अगर आप उन लोगों की अकवाल पढ़ें तो वो हुकूमत की ज़िम्मेदारियों को इसीलिए लेने के लिए तैयार नहीं होते थे क्योंकि उनको पता था कि इसके ऊपर जब सवाल होगी, पूछगछ होगी, तो शायद मैं इसका हक अदा ना कर पाऊँ। तो आप लोगों को अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से एक ज़िम्मेदारी दी गई है, और हम में से कोई भी अहल नहीं होता, हम में से कोई भी फ़रिश्ता नहीं है या उस लेवल पर नहीं है कि हम बोलें कि हम शायद इम्तिहान में, शायद हर इम्तिहान में कामयाब हो जाए। हम सब कमज़ोर हैं, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है तो आप शायद अपने लिए वो कफ़ारा बना दें किसी ऐसे नेकी का काम करते हुए कि आप उसको, उसके लिए हक की आवाज़ बने और आप उसको ज़रिया बने कि अल्लाह ताला आपके लिए शायद उसको निजात का ज़रिया बना दें,
और अल्लाह के साए के सुपुर्द
जो, और अल्लाह के साए के अर्श के साए के नीचे जो है आपको जगह मिले। हम अपने लोगों के लिए इंसाफ करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंसाफ कायम करना मुसलमानों की सिफत है, ईमान वालों की सिफत है, और कौम तबाह हुई नाइंसाफ़ी की बिना पर, और बाकी रहीं इंसाफ की बिना पर, और जुल्म एक ऐसी चीज़ है जिसकी सज़ा अल्लाह सुब्हान तआला दुनिया में ही अता कर देता है, और दुनिया में इसलिए अता कर देता है ताकि ऐसा ना हो कि जालिम समझे कि शायद वो जुल्म से बच कर निकल गया, जुल्म करके बच कर निकल गया। हमारी दुआ यही है कि तमाम वो लोग जो लोग किसी भी इम्तिहान में हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे, और जो लोग डॉक्टर आफ़ी और उनकी फैमिली वालों के लिए अल्लाह सुब्हान तआला जल्द खुशखबरी सुनाएं और उनको वापस ले आएँ, अपने बच्चों से मुलाकात कर दें, और अल्लाह सुब्हान तआला उनके घर वालों के सब्र का नतीजा उनको अता करें, और तमाम वो लोग जो शायद इसी तरह से किसी झूठे केस या गलत उस मामले में फंसे में अल्लाह सुब्हान व तआला उनके लिए भी निजात का ज़रिया बनाए, और अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे लिए कौम को हमारी आज़ाद करे, हमारे पैर हमारी कौम को पैरों पर खड़ा करे, और अल्लाह ताला हमें अपने मुकर्रबीन में शामिल कर दे, अपने जो सच्चे लोगों में शामिल कर दे कि हम अल्लाह सुब्हान व तआला के सामने अपने गुनाह माफ़ करवा सकें, और उन कम लोगों में शामिल हो जाएँ जो जिससे अल्लाह सुब्हान व तआला राज़ी हो जाए और बग़ैर हिसाब उनको जन्नत में दाखिल कर दे। आई होप अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमने कहनी चाहिए थी शायद हमें नहीं कह पाए, और अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, बट ये हमारी छोटी सी एक एफर्ट है टू बी एबल टू स्पीक अप ऑन अ सब्जेक्ट, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कबूल करे। थैंक यू सो मच हसन फॉर जॉइनिंग इन, एंड आप मुझे आपको थोड़ी आदत होगी खामोश रहने की क्योंकि आप दांत निकालने बिजी होते हैं, लेकिन हमने आप आज आपको जो है हमारी बात सुनने के लिए बुला लिया, बट मोर अलैह जज़ाकल्लाह खैर फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच हैदर फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कबूल करे। जज़ाकुमुल खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह के और मजीद वीडियोस पॉसिबल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आपकी सपोर्ट के साथ। क्लिक ऑन द पेट्रियन लिंक एंड सपोर्ट अस नाउ।